श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का अवतार होता है। जैसे इस संसार के जीव कर्म के वश होकर माता के गर्भ में 9 महीने तक दुख भोगते हैं और तत्पश्चात इस संसार में जन्म लेते हैं, भगवान का इस प्रकार से हम जीवों की तरह जन्म नहीं होता, वे प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के जन्म को अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए भगवान अपने धाम से उतरते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है और फिर भगवान मर जाते हैं, जैसे भगवान राम सरयू नदी में डूबकर और भगवान श्री कृष्ण को किसी बहेलिए ने, जरा नाम के शिकारी ने बाण लगाकर मार डाला। वास्तव में इस बात को तत्व से समझना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसे तत्व से जानना होगा। तत्व क्या है? तत्व यह है, भगवान का जन्म नहीं, भगवान का प्राकट्य होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि सूर्य का आज सुबह जन्म हुआ और बेचारा शाम को मर गया, तो क्या यह बात सत्य है? सूर्य का जन्म नहीं, सूर्य प्रकट हुआ है और शाम को सूर्य अप्रकट होता है, दूसरे दिन वही सूर्य प्रकट होगा। तो शाम को सूर्य हमें दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य मर गया, सूर्य अप्रकट हुआ है। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने धाम से यहां पर प्रकट होते हैं और इस पृथ्वी पर जब अपना काम समाप्त कर देते हैं तब यहां से अप्रकट हो जाते हैं, मरते नहीं है। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। और भगवान क्यों प्रकट हुए हैं? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जगत में मर्यादा धर्म का उपदेश देने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। हनुमान जी महाराज भागवत के 5वें स्कंद में भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जन्म रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। मर्त्य वतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षावदा एव न केवलम विभो। हे प्रभु, रावण को मारने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, यह सत्य बात है। जो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर सकते हैं, भगवान के इशारे से अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है, उस एक ब्रह्मांड में रहने वाले छोटे से रावण को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है? अपने धाम में बैठे बैठे एक इशारे से रावण जैसे अनेक असुरों को मार सकते हैं। रावण को मारने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है, आपका जन्म मर्त्य अवतार इस मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य को उपदेश देने के लिए हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र अपने जीवन में आचरण करके सिखाए कि किस प्रकार एक पुत्र को पिता के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार एक पति को अपने पत्नी के साथ रहना चाहिए, किस प्रकार एक भाई को अपने भाई के साथ प्रेम करना चाहिए, ये भगवान श्री रामचंद्र आचरण करके सिखाए। आपनी आचरित प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से जगत के लोगों को यह उपदेश दिए। वास्तव में रामायण हमें जीना सिखाती है। किस प्रकार से हमें जीना है यह सीखना है तो रामायण सुनना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र सिखाते हैं किस प्रकार से हमारे जीवन को मर्यादा में ढालकर जीना चाहिए। भगवान का जन्म हुआ है, राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न है, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराए, मंत्रों का उच्चारण कराए, कई सारे गाय को दान में दी। धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चारों भाई धीरे धीरे बड़े होते गए। एक दिन की बात, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ की सभा में पधारे। राजा दशरथ ने स्वागत किया और कहा, महर्षि आप क्यों यहां पर आए हो, आपको क्या चाहिए? तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हम लोग वन में यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में असुर गण बाधा दे रहे हैं, तो उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजो। इतना सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में बहुत दुख हुआ और विश्वामित्र को कहने लगे, प्रभु आपको जो चाहिए वह मांग लो, परंतु राम को मुझसे अलग मत कर, क्योंकि राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से बहुत प्रेम करते थे। यदि आपको धन चाहिए, लाखों गाय चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो, और युद्ध में असुरों से आपकी के यज्ञ की रक्षा ही करनी है तो मैं आप कहो उतनी सेना को भेज देता हूं, परंतु राम को मत लेकर जाओ, राम मेरा प्राण है और राम यदि चला जाएगा मेरा प्राण छूट जाएगा, प्राण से भी अधिक प्रेम मैं राम को करता हूं, राम को मत लेकर जाइए। परंतु विश्वामित्र बारंबार विनय कर रहे हैं कि नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। राजा दशरथ अपनी धीरज खो बैठे, परंतु उसी समय बाजू में बैठे हुए वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया कि विश्वामित्र जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और विश्वामित्र के साथ यदि आप अपने बालकों को भेजोगे उनकी कीर्ति तीनों भुवन में अमर हो जाएगी। वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ में पहुंचे हैं और वहां पर जितने जितने असुर उनके यज्ञ में बाधा देते थे वे सभी असुरों का राम और लक्ष्मण ने वध किया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ और असुरों का वध हुआ। उनमें एक असुर को भगवान ने नहीं मारा जिसका नाम मारीच था, क्योंकि भगवान को पता था यह मारीच आगे चलकर मेरी लीला में सहायता करेगा, इसलिए मारीच को बिना फर का बाण मारा सात समुंदर पार जाकर गिरा। यज्ञ संपन्न हो गया और उसी समय जनकपुर के राजा जनक अपनी कन्या सीता का विवाह कराना चाहते थे। उम्र हो चुकी थी और सीता का विवाह कराने के लिए बहुत बड़ा स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता रखी। शिव जी ने परशुराम जी को एक अद्भुत धनुष प्रदान किया था और परशुराम जी ने वह धनुष राजा जनक को प्रदान किया और वह विशाल धनुष, आचार्यगण कहते हैं कि वह धनुष इतना विशाल था परशुराम के पास से जनकपुरी में वह धनुष को लाने के लिए जनक महाराज के 1000 सैनिक लगे थे तब वह धनुष को उठाकर यहां जनकपुरी में पहुंचाया गया। परंतु एक दिन की बात, देवी सीता घर पर पोचा मार रही थी, उसी समय देखा कि धनुष के नीचे बहुत मट्टी है, तो सीता ने केवल एक उंगली से धनुष को ऊपर करके नीचे कपड़ा लगा दिया। राजा दशरथ इस अद्भुत दृश्य को देखे, जिस धनुष को हजारों लोग उठाकर लाए हैं उसे सीता ने एक उंगली से उठा लिया। उस दिन से राजा दशरथ ने सोच लिया था कि सीता का जब विवाह कराऊंगा तब मैं यह शर्त रखूंगा, जो व्यक्ति इस धनुष को उठा ले और इस पर प्रतंचा चढ़ा दे वही मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए योग्य होगा। तो राजा जनक ने यह शर्त रखी और पूरे भूमंडल में एक से एक राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा। और उसी समय राजा जनक का निमंत्रण लेकर एक व्यक्ति विश्वामित्र के पास आया, राजा दशरथ ने आपको आमंत्रित किया है और आपके साथ ये दोनों राजकुमार को भी बुलाया है। तब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी जाने के लिए निकलते हैं, परंतु जनकपुरी जाते समय वन मार्ग से होकर जा रहे हैं, जंगल के मार्ग से जा रहे हैं। स्वामी तुलसीदास जी कथा का वर्णन करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र ने जंगल में एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम देखा, बहुत सुंदर आश्रम था, परंतु उस आश्रम में मनुष्य की बात तो दूर रही, कोई पशु पक्षी या जीव जंतु भी नहीं थे, परंतु उस आश्रम के उस घर के बीचों बीच एक पत्थर की शिला खड़ी थी, एक पत्थर की स्त्री की मूर्ति पड़ी थी। तो भगवान श्री रामचंद्र ने यह शिला को देखकर विश्वामित्र जी को पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा कही कहा विशेष। शिला को देखकर भगवान श्री रामचंद्र पूछे कि प्रभु ये शिला क्या है, ये पत्थर के रूप में कौन स्त्री बैठी है। तब विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि हे राघव, हे रघुवर, ये कोई साधारण शिला नहीं है, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करू रघुवीर। हे रघुवीर, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इसका नाम अहल्या है, और पापवश नहीं गौतम ऋषि के श्राप के कारण यह पत्थर बनकर खड़ी है। भगवान ने पूछा इसे पाप श्राप क्यों लगा। एक समय की बात, देवराज इंद्र को यह अहल्या को देखकर उन पर मोहित हो गया और अहल्या के साथ संग करना चाहता था, परंतु अहल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ हो चुका था। एक दिन की बात, देवराज इंद्र मुर्गे का रूप लेकर गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर चिल्लाने लगा, और गौतम ऋषि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। आज जैसे हम अलार्म को सुनकर जग जाते हैं, पहले के लोग मुर्गे की आवाज सुनकर जगते थे। तो गौतम ऋषि जब रोज सुबह मुर्गे की आवाज होती थी वे जगकर नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे, परंतु आज इंद्र मुर्गे का रूप लेकर आया, बोलने लगा। गौतम ऋषि के मन में हुआ कि सुबह हो चुकी है और वे घर से निकलकर नदी में स्नान करने के लिए चले गए, परंतु वास्तव में सुबह नहीं हुई थी, रात को 2-2.5 बजे थे। गौतम ऋषि जैसे ही घर से बाहर निकले उसी समय इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर घर में अंदर आ गए। अलिया ने पूछा, आप तो अभी अभी गए थे, क्यों तुरंत वापस आ गए? परंतु इंद्र कुछ नहीं बोला और उस गौतम ऋषि के शरीर से इंद्र ने अहल्या के साथ संभोग किया, संग किया। और संग करके जब इंद्र वापस निकल रहा था उसी समय गौतम ऋषि ने जाकर देखा, अरे बाप रे बाप, अभी तो रात के 2:30 बजे हैं। गौतम ऋषि वापस लौटे, वापस लौटकर गौतम ऋषि ने इंद्र को घर से बाहर निकलते देखा। सबसे पहले अपनी पत्नी अहल्या के पास आकर कहे, सत्य सत्य बताओ क्या हुआ है, सत्य सत्य कहना क्या हुआ है। अहल्या बिचारी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि अहल्या तो सोच में पड़ गई कि यदि ये मेरे पति हैं तो इसके पहले थे वह भी उसी रूप वाले थे। अहल्या कुछ बोल नहीं पाई, गौतम ऋषि बार बार पूछने लगे, सत्य सत्य बताओ क्या हुआ। अहल्या पत्थर की तरह खड़ी रह गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जड़ की तरह पत्थर की तरह खड़ी हो तो मैं श्राप देता हूं, पत्थर हो जाओ। अहल्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु इतना बड़ा श्राप मेरे पर कृपा कीजिए। तब गौतम ऋषि ने कहा कि पत्थर तो तुम्हें होना ही है, परंतु मैं आशीर्वाद देता हूं कि साक्षात भगवान चलकर यहां पर आएंगे और जब अपना चरण तुम्हारे सिर पर रखेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। और तुरंत गौतम ऋषि वहां इंद्र को पकड़ने गए और इंद्र को देखकर इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे शरीर पर सहस्त्र अक्ष सहस्त्र आंख हो जाए। उस दिन से इंद्र के शरीर पर 1,000 आंखें हैं। यद्यपि वह 1,000 आंखें देखने का काम नहीं करती हैं, परंतु उसके शरीर को कुरूप बनाने के लिए गौतम ऋषि ने यह श्राप दिया था। आप कल्पना करो, शरीर में यहां भी आंख यहां भी आंख, कितना गंदा शरीर लगता है। 1,000। और उस दिन से इंद्र का नाम हुआ सहस्त्राक्ष, सहस्त्र अक्ष। तो विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को कहते हैं कि राम, ये गौतम नारी तुम्हारी राह देखकर बैठी है, तुम जाओ अपने चरण की रज उनके सिर पर प्रदान करो, उसका उद्धार करो। भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र के कहने पर गौतम ऋषि की पत्नी के पास आए और आकर भगवान श्री रामचंद्र ने अपना श्री चरण ऊपर करके जैसे ही गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर रखा, रखते ही गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत वह पत्थर के रूप को त्याग कर बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और उनके शरीर से अद्भुत तेज निकलने लगा। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप कुंज सही। अहल्या के शरीर से तेज निकल रहा है। वास्तव में जो स्त्री या पुरुष तपस्या करते हैं तपस्या से तेज बढ़ता है। आज संसार की कई स्त्रियां अपना तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, मेकअप करती हैं, परंतु तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तपस्या करने की जरूरत है। तपस्या से तेज बढ़ता है, तेज पुंज निकल रहा है और प्रकट हो चुकी है, सामने भगवान खड़े हैं, भगवान को देख रही है और दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आ के प्रति अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, शरीर पुलकित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बोलना तो बहुत है परंतु बिचारी कुछ बोल नहीं पा रही है। बोलने की इच्छा है, स्तुति करने की इच्छा है परंतु मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। अति सय बड़भागी चरण जुगल नयन जल धार बही। मन ही मन में सोच रही है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अपने भाग्य को जानकर उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वास्तव में एक नारी है, स्त्री है, स्त्री को अबला कहा गया है, जिसमें कोई बल नहीं होता, स्त्री का बल एकमात्र उनका आंसू होता है, रोने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहती हैं परंतु मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। धीरज मन कीना प्रभु रघुपति कृपा भगति पाई। आंखों से आंसू निकल रहे हैं परंतु हलिया धीरज धारण करती है, मन में धीरज धारण करके मुंह से कुछ वचन कर रही है। अति निर्मल वाणी ज्ञान गम्य जय रघुराई। अत्यंत निर्मल वाणी से, नम्र वाणी से अलिया भगवान को कह रही है कि प्रभु आप तो ज्ञान से अगम्य है, आपको कोई जान नहीं सकता है, इस संसार के बड़े बड़े मुनि सिद्ध परमहंस आपको जान नहीं सकते हैं और मैं तो नारी हूँ, जन्म से ही पापी हूँ, मैं कैसे आपको जान सकती हूँ। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन,
नारी पावन प्रभु जग पावन,
रावण रि पूजन सुखदाई, कैसे जान सकती हूँ। परंतु हे रावण को मारने वाले, हे रावण का मर्दन करने वाले, हे कमल नयन, हे जगत के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अहल्या कह रही है कि आप कमल नयन हो, जगत के भय को दूर करने वाले हो और आप रावण को मारने वाले हो। मन में प्रश्न होना स्वाभाविक है, अभी तो भगवान को वनवास भी नहीं मिला, भगवान ने रावण को नहीं मारा और अहल्या अभी से कह रही है कि आप रावण को मारने वाले हैं, ये कैसे संभव है। यहाँ पर एक सिद्धांत प्रकट होता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करने वाले भविष्य दृष्टा हो जाते हैं, भविष्य का दर्शन कर लेते हैं। अभी से अहल्या जान गई कि भगवान रावण को मारने वाले हैं। मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है बहुत अच्छा अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझे डांटा है, अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है। देखिए कभी कभी कोई पति अपने पत्नी को डांटता है तो पत्नी को इस प्रकार से एहसास करना चाहिए, स्वीकार कर रही है कि प्रभु अच्छा हुआ मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि यदि श्राप नहीं दिया होता तो हजारों हजारों जन्म बीत जाते, आपका दर्शन भी नहीं कर पाती। परंतु मेरे पति ने श्राप दिया, उस श्राप के कारण प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपके चरण की रज मिल गई।
मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, 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 परम अनुग्रह में माना दे
संसार के लोग क्या जाने, साक्षात शिव जी इस लाभ को जानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अहिल्या को कहते हैं कि देवी मैं आप पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांगो। पहले तो अहिल्या कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु भगवान जब बार बार कहते हैं तब अहिल्या मांगती है।
विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नातन मांगहुं बर आना। विनती प्रभु
भगवान कहते अहिल्या मांगो तुम्हें क्या चाहिए, परंतु अहिल्या बहुत सुंदर बात कह रही है। हे नाथ आप मांगने के लिए तो कह रहे हैं, परंतु मेरी मति इतनी गिरी हुई है कि मुझे क्या मांगना चाहिए यह भी नहीं जानती, मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए यह भी मैं नहीं जानती हूँ, क्या मांगूंगी। लेकिन फिर भी यदि आपको देना ही है तो आपके चरण में एक ही प्रार्थना है।
पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पकड़े पाना। पर
हे प्रभु आपको देना ही है तो जैसे जैसे एक भंवरा कमल के फूल के ऊपर बैठे रहता है और कमल के पराग को निरंतर ग्रहण करते रहता है, कभी कभी सूर्यास्त होने पर वह फूल बंद हो जाता है और भंवरा उस कमल में रहकर मर जाता है, परंतु उस कमल की पराग गंध को छोड़ता नहीं। तो जैसे भ्रमर कमल की गंध को लेने में आसक्त रहता है, 24 घंटा उत्कंठ रहता है, उसी प्रकार मेरा मन आपके चरणों में भ्रमर की तरह आसक्त है।
जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट वही परम पुनीता
कल्या अपने आप को धन्य मान रही है, आज मैं धन्य हो गई जिस भगवान के चरणों से गंगा निकली है और उस गंगा को अपनी जटा में धारण करने पर शिव जी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। वह साक्षात चरण आज मेरे सिर पर आए हैं, आज तो मैं धन्याती धन्य हो गई। अहल्या धन्य हुई और भगवान की कृपा से अहल्या को अपने पति का लोक प्राप्त हुआ। एही बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी,
बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी,
जो अति मन भावा तो भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से अहल्या का उद्धार हुआ और भगवान के आशीर्वाद से अहल्या वह स्थान को प्राप्त की जहां पर उनके पतिदेव अर्थात गौतम ऋषि स्थान पर विराजमान थे। अहल्या का उद्धार किए तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र चलते चलते जनकपुरी में पधारे। जनकपुरी में भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र आए, उनको रहने के लिए अलग कमरा दिया गया। वह समय निकट आ गया जब सीता का स्वयंवर होना था। सीता के स्वयंवर के दिन इस संसार के सभी राजा महाराजा उस सभा में उपस्थित हुए। कहते हैं कि देवताएं भी मनुष्य रूप धारण करके उस सभा में उपस्थित थे और उसी सभा में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। गोस्वामी वहां पर लिखते हैं कि उस स्वयंवर सभा में अनेकों सैकड़ों लोग उपस्थित थे और उन लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन किया, परंतु जिन लोगों के मन में भगवान के प्रति जो भाव था उस भाव के अनुसार भगवान का दर्शन किया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तेव भजाम्यहम्, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन तेखी तैसी। जो जिस भाव में भगवान का भजन करते थे उस रूप में भगवान का दर्शन किया। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र को आसन दिया गया, प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। मंत्री ने ऐलान किया कि आप सब लोग अलग अलग देश गांवों से पधारे हो, जो व्यक्ति इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जनक लाडली जनक दुलारी सीता का विवाह उसके साथ कराया जाएगा। देवी सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। स्वयंवर सभा प्रारंभ हुई और एक से एक राजा महाराजा मन में हौसला है कि हम धनुष उठा लेंगे, आए प्रयास किए, परंतु धनुष उठाने की बात तो दूर रही, उसे तिल बार भी हिला भी नहीं पाए। अपनी सारी शक्ति लगाई परंतु धनुष को हिला नहीं पाए। अंत में एक साथ दो दो राजा महाराजा प्रयास करते लेकिन फिर भी धनुष नहीं हिलता। तीन तीन चार चार दस दस राजा एक साथ प्रयास करने लगे। तब राजा जनक उस राजाओं को ललकारते हुए कहते हैं, बस बहुत हो गया, मैंने तो सुना था कि इस सभा में एक से एक योद्धा आए हैं, वीर आए हैं और मैंने बड़े बड़े वीरों को आमंत्रण दिया था, परंतु आज मुझे पता चला कि यह भूमि वीरों से खाली हो चुकी है। जब राजा जनक इस प्रकार से बोले कि यह भूमि वीरों से खाली हो चुकी है, अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, तुरंत खड़े होकर बस राजा जनक बस बहुत हो गया। जिस सभा में रघुकुल में से कोई एक भी बैठा हो उस सभा में इस प्रकार से बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और यहां पर सूर्य वंश के राजा राम बैठे हैं और तुम इस प्रकार से बोल रहे हो, अरे शिव धनुष क्या चीज है, यदि मेरे बड़े भाई राम मुझे आज्ञा दे तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लू और ऐसे पटकू कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। धनुष की क्या बात करते हो, यदि मेरे भाई आज्ञा दे तो इस धनुष को उठाकर हजारों किलोमीटर दौड़ दू। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी क्रोधित होते ही यह दिग्गज डोलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। परंतु भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को इशारा किया, लखन शांत, इस प्रकार से क्रोधित नहीं होते। और उसी समय विश्वामित्र जी ने योग्य समय नक्षत्र काल देख लिया और भगवान श्री रामचंद्र को आदेश देते हैं, उठो राम भंजऊ, हे राम खड़े हो और इस धनुष को तोड़ डालो। विश्वामित्र का के इशारे को देखकर, विश्वामित्र की आज्ञा को देखकर भगवान श्री रामचंद्र खड़े हुए। अब तो यहां पर बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट होता है। क्या भगवान श्री रामचंद्र नहीं जानते थे कि इस धनुष को मैं ही तोड़ने वाला हूं? सब कुछ जानते थे, तोड़ने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हुए। जब तक विश्वामित्र जी ने नहीं कहा तब तक भगवान राम खड़े नहीं हुए। वहां अहल्या के बारे में भी भगवान क्या नहीं जानते थे? लेकिन जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा तब तक अहल्या का उद्धार नहीं किया। बहुत सुंदर सिद्धांत प्रकट होता है। जब हम वरिष्ठ लोगों के साथ होते हैं, हमसे बड़े लोग हमारे साथ होते हैं, तो बड़े लोगों की आज्ञा के बिना हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यद्यपि वह कार्य करना भले हम जानते हैं, परंतु बड़े लोगों की अनुमति न हो तब तक वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। महाभारत में बहुत सुंदर प्रसंग है। महाभारत के युद्ध में दोनों सेना आमने सामने उपस्थित हो गई। युद्ध शुरू होने जाने वाला था, उसी समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरे तो भीम भी अपने रथ से उतर गए, उसे देखकर अर्जुन भी अपने रथ से उतर गए, नकुल और सहदेव भी अपने रथ से उतर गए, और ये पांचों पांडव युधिष्ठिर महाराज आगे पीछे पीछे सब लोग चल रहे हैं। और चलते चलते अपने पक्ष से दुर्योधन के पक्ष में आए और दुर्योधन के पक्ष में सबसे पहले पितामह भीष्म के पास जाकर पितामह भीष्म को युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने प्रणाम किया और पितामह भीष्म के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दे दिया। द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया। महाभारत में लिखा है पितामह भीष्म द्रोणाचार्य मन ही मन में सोच रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ युधिष्ठिर महाराज और ये पांडव प्रणाम करने के लिए, युद्ध की अनुमति लेने के लिए हमारे पास आ गए, निश्चित ये पांडवों की ही विजय होगी। यद्यपि उनके साथ युद्ध करना है परंतु युद्ध करने की अनुमति जब तक पितामह भीष्म ने और द्रोणाचार्य ने नहीं दी तब तक युद्ध प्रारंभ नहीं किया। और वरिष्ठ अपने से बड़े लोगों से अनुमति ली और उनकी अनुमति से उन्हें ही मार डाला। बड़े लोगों की अनुमति बहुत जरूरी है। भगवान श्री रामचंद्र जब तक विश्वामित्र ने नहीं कहा तब तक न तो अहल्या का उद्धार करने के लिए गए न तो धनुष उठाने के लिए गए। परंतु विश्वामित्र ने जैसे ही कहा कि राम जाओ और अपना पराक्रम जगत के लोगों को दिखा दो, तो भगवान श्री रामचंद्र विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके धीरे धीरे खड़े होकर धीरे धीरे उस धनुष की ओर जा रहे हैं। धनुष के पास भगवान श्री रामचंद्र पहुंचे हैं और एक नजर भगवान ने सीता जी की ओर देखी। उस समय जगत जननी माता सीता व्याकुल हो रही थी, मन में सोच रही थी, बड़े बड़े राजा इस धनुष को नहीं उठा पाए, इतने कोमल राजकुमार ये कैसे इस धनुष को उठाएंगे। भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु राम को शक्ति दीजिए ताकि ये धनुष उठाए और उनके गले में मैं वरमाला डालूं। सीता जी बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं, हरे राम 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 सीता को देख लिए। भगवान श्री रामचंद्र अपना दाहिना हाथ धनुष के पास धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, मन से अपने गुरु को प्रणाम कर चुके हैं और गुरु को प्रणाम करके अपने हाथ उस धनुष के ऊपर रखते हैं और भगवान श्री रामचंद्र उस धनुष को वैसे उठा लिए जैसे एक बालक खिलौने को हाथ में उठा लेता है। धनुष को हाथ में उठाकर जैसे ही गर्भपतंजा चढ़ाने गए उस समय धनुष को टूटने की धमाधार आवाज हुई। वह आवाज से सूर्य पूर्व की ओर जा रहा था, पश्चिम की ओर हो गया। दीपाल चक्र काटने लगे, शनि समुद्र में पानी उछलने लगा, पर्वतों के शिखर टूटने लगे। विंध्याचल और हिमाचल की गुफाओं में तपस्या करने वालों के ऋषियों की ध्यान भंग हो गए। देवताओं की कांख पर हाथ रखे रखने लगे, बुद्धि डोलने लगी, मंदिर मंदोदरी की छुरी टूटी और इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र धनुष को तोड़ देना और पिताजी के द्वारा वरमाला प्राप्त हुई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, सीता स्वयं वर की, श्री राम जय राम जय जय
Hey, Ram.
भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ है। प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने उस शिव धनुष को तोड़ा और सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाली है, विवाह हुआ। बहुत सुंदर परशुराम प्रसंग गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। उस धनुष टूटने की आवाज सुनकर परशुराम जी मंदार पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, वहां से क्रोधित होकर आए और परशुराम के आते देखकर जितने भी राजा महाराजा थे अपने दोनों हाथ जोड़कर अपना मुकुट परशुराम के चरण में रखकर बिना पूछे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने दादा का नाम बताने लगे। सब लोग डर गए, कांप गए, क्योंकि ये वो परशुराम थे जिन्होंने 21 बार इस संसार के क्षत्रियों का वध किया था। तो सोचने लगे कि यहां पर क्रोधित तो होकर आए हैं, लगता है हम सबको मार डालेंगे। राजा जनक प्रणाम करते हैं, परशुराम जी क्रोध में है, बस एक ही जवाब चाहिए, किसने इस धनुष को तोड़ा है? एक ही उनका प्रश्न है, किसने धनुष को तोड़ा? लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा, जब से आए हो तब से धनुष धनुष कर रहे हो, कभी आपने धनुष को नहीं देखा? परशुराम क्रोधित होकर, अरे मूर्ख, वो शिव धनुष था, किसने शिव धनुष को तोड़ा है? शिव धनुष को तोड़ने वाला मेरा अपराधी है, मेरे सामने उपस्थित करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, बचपन में तो ऐसे कैसी कई धनुर्या तोड़ डाली, तब तो किसी ने नहीं कहा, आज एक धनुष टूट गया, इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? परशुराम ने कहा, शिव जी का धनुष है और शिव का धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। तुम मेरा पराक्रम नहीं जानते हो, 21 बार क्षत्रियों का वध किया हूं, सहस्त्रबाहु का वध किया हूं, धनुष तोड़ने वाले को मेरे सामने उपस्थित करो। अंत में भगवान श्री रामचंद्र परशुराम जी को बहुत सुंदर बात कहते हैं कि प्रभु वास्तव में आप महान हो, आपका अपराधी मैं हूं, मैंने इस धनुष को तोड़ा है, आपको जो सजा देनी है दे दो, आप तो महान हो, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, मेरा नाम तो केवल राम है परंतु आपका नाम परशुराम है। विप्र वंश की असप्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई, संसार में ऐसा कौन है जो आपको डरा सकता है। तब परशुराम को पता चला ये तो साक्षात भगवान है। परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ, यहां से वापस गए, भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ, सीता के साथ विवाह करके भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए हैं। तो हमारे समाज में एक नियम है कि जब बहू पहली बार घर पर आती है, माता पिता को या किसी बुजुर्गों को प्रणाम करती है, तो बड़े व्यक्ति उसे कुछ पैसे देते हैं आशीर्वाद के रूप में। राम और सीता दोनों आए हैं अयोध्या में, और सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र अपनी माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे, तो सबसे पहले कैकेयी के पास गए, कैकेयी को सीता जी ने प्रणाम किया और कैकेयी ने सीता के रूप को देखा, सीता जी के वस्त्र को देखा, देखा कि इतना सुंदर वस्त्र पहना है, इतनी मर्यादाशालीन स्त्री है, इतनी मर्यादा में है कि इसका एक अंग भी दिख नहीं रहा है। बहू जब घर पर आती है तो उनके वस्त्रों से पता चल जाता है कितनी मर्यादा है। कैकेयी ने देखा इतनी मर्यादाशालीन स्त्री है, आज भी यह मर्यादा गांव में है और खास करके मारवाड़ी समाज में तो हम देख रहे हैं, और किसी भी समाज में इतनी मर्यादा है, सिर पर घूंघट तो कोई लाता ही नहीं है, पर यहां तो यहां तक लंबा खींच कर रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्न है। मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा हम सुन रहे हैं, इसलिए मर्यादा के बारे में सुन लीजिए। जीवन में यदि मर्यादा नहीं है तो जीवन कुछ काम का नहीं है। मर्यादा धर्म सिखाने के लिए ही भगवान राम प्रकट हुए हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि मर्यादा नहीं है तो यह मनुष्य जीवन कुछ काम का नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि इतना सुंदर मनुष्य देह मिला है और उसमें मर्यादा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मानो आपको कोई बहुत अच्छी गाड़ी दे दे, चार चक्के की गाड़ी, मर्सिडीज बेंज कार, और आपको कहे आप ट्रायल ड्राइव, आप इसे चलाओ। मान लो आप चलाने लगे 200 की स्पीड से जा रहे हो और देने वाले का फोन आए कैसी कार लगी आपको, तो आपको बहुत अच्छी है, इसकी गति कैसी है, बहुत अच्छी स्पीड है, स्टेयरिंग कैसा है, पावर स्टेयरिंग, बहुत अच्छा स्टेयरिंग है, रंग कैसा है, बहुत अच्छा रंग है, इसके टायर कैसे, बहुत अच्छे टायर है, परंतु फोन करने वाला कहे संभाल के चलाना ब्रेक नहीं है, क्या होगा। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितना भी अच्छा स्टेयरिंग हो, कितना भी अच्छा रंग हो, कितनी भी अच्छी गति हो, कितना भी अच्छा टायर हो, परंतु यदि ब्रेक नहीं है तो वो गाड़ी कुछ काम की नहीं है। वैसे ही कितनी भी सुंदर आंखें हो, मनुष्य जीवन हो, परंतु मर्यादा नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। कितना भी सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है, परंतु मनुष्य जीवन प्राप्त करके यह मर्यादा नहीं है, क्या काम का यह जीवन, मर्यादा होनी चाहिए। अब आगे चलकर सुनोगे भगवान श्री रामचंद्र को जब वनवास मिलेगा तो कई गांवों से पसार होकर भगवान जाते हैं, तो गांव में रहने वाले भील और भीलनी जो होती हैं, भगवान श्री रामचंद्र पुरुषों के समाज में बैठते हैं और सीता जी स्त्रियों के समाज में बैठती हैं, तब वे सारी स्त्रियां सीता को पूछती हैं कि देवी, ये तुम्हारे साथ जो ये दोनों पुरुष है, ये दोनों पुरुष कौन है? करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मूर्छित करने वाले, इतनी सुंदर आभा है उनकी, इतने सुंदर, ये दोनों पुरुष तुम्हारे साथ कौन है? आज की कोई स्त्री होती तो कह देती ये मेरे मिस्टर है, तो नाम लेकर ही कह देती ये अमित है मेरा हस्बैंड। आज की नारी, परंतु देखिए सीताजी कितनी सुंदर मर्यादा सिखाती। सीता को पूछा गया है कि ये दोनों पुरुष आपके साथ जो आए हैं ये कौन है? गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि सीता जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी की ओर उंगली बताकर कहा कि वो जो बैठे हैं गोरे गोरे, वो मेरे देवर है। जो बहुत सुंदर गोरे गोरे बैठे हैं वो मेरे देवर हैं। और अब तो अपने पति की को दिखाने की बात आई, तब अपने पति के सामने देखकर अपना घूंघट और खींचकर बस इतना ही कहती कि उसकी बाजू में जो बैठे हैं वो है। हो गया क्या? आप नहीं समझे? सब लोग समझ सकते हैं, इसे मर्यादा कहते हैं। आज की आर्यवर्ष की नारी अपने मुख से कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। आज तो पत्नियां अपने मुख से पति का नाम ले लेकर बुलाती है। कभी कभी प्रश्न होता है इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि कोई स्त्री अपने पति का मुख अपने मुख से नाम ले तो उसे मर्यादा कम हो जाती है। ये हमारे जो बुजुर्गों ने शास्त्र की प्रणाली के अनुसार जो नियम बनाए बिल्कुल सही नियम है। एक घूंघट खींचना, अपने मुख से अपने पति का नाम न लेना, आज भी हमारे देहातों में यह देखा गया है कि उसके पापा यहां गए हैं, ऐसा अपने पुत्र का नाम लेकर बोलते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। इससे मर्यादा रहती है, आदर रहता है। दशहरे में तो ये सारा आदर निकल चुका है। तो सीता जी मर्यादा में स्थित हैं और सीता की मर्यादा को देखकर कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, आज तो मुंह दिखाए में 50, 100 या 500 की नोट देते होंगे, परंतु कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। कैकेयी का जब विवाह हुआ था तब कैकेयी ने के पिता ने उसे सोने का महल दिया था, और सीता जी के इस मर्यादा को देखकर कैकेयी ने अपने सोने का महल ही सीता जी को दे दिया। सीता, आज से यह सोने का महल तुम्हारा है। अपने कमर में जो चाबी का जुड़ा था सीता जी को ही दे दिया, मैं आज से तेरा। कई बहू शिकायत करती है कि हमारी सास तिजोरी की चाबी अपने ही पास रखती है, हमें देती ही नहीं है, कहां से दे? सीता जैसी मर्यादा जब आएगी तब देगी ना। बिना मर्यादा में आपको घूमना है घर पर तो कैसे दे? और सभी सास के लिए भी ये बहुत सुंदर उपदेश है कि यदि बहू मर्यादित है, संस्कारी है, तो वो सब तिजोरी की चाबी दे देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन भर रखे हमारे पास। कनक भवन जो आज भी अयोध्या में है, कनक माने सोना, आज भी कनक भवन अयोध्या में उपस्थित है। तो इस प्रकार सीता जी परम मर्यादा में स्थित है। सीता जी का विवाह हुआ और सारी अयोध्या राम और सीता की जोड़ी को देखकर प्रसन्न है, सब लोग खुश है, सब लोग प्रसन्न है। और राजा दशरथ बहुत सुंदर अपना राज चला रहे हैं। एक दिन की बात, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। एक समय की बात, राजा दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, सभा भरी हुई थी। राय सुभाई मुकुट कर लीनहा, वदन विलोक की मुकुट सम कीन्हा। सभा के बीच में राजा दशरथ बैठे थे, उनका मुकुट कुछ हिल गया या गिर गया। तो मुकुट ठीक करने के लिए राजा दशरथ ने एक कांच मंगाया, एक आईना मंगाया अपना मुख देखने के लिए। तो जैसे ही राजा दशरथ ने सिंहासन के ऊपर बैठकर अपने मुख को उस आईने में देखा तो कान के ऊपर एक बाल सफेद हो गया था। बाल सफेद हुआ देखा राजा दशरथ ने, तुरंत मन में सोचा कि अब चौथापन आ चुका है, बाल सफेद हो गए हैं, अब ये राज कारोबार छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए निकल जाना चाहिए। तुरंत राजा दशरथ ने सोचा अब मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र को राजा बनाऊंगा और ये सब फजीहत से मुक्त हो जाऊंगा। देखिए पहले के राजा महाराजा ऐसे होते थे। और ये बाल सफेद होना ये भगवान की एक नोटिस है, जेल में डालने से पहले पुलिस वाले नोटिस भेजते हैं, कोर्ट में से नोटिस आती है, यदि हम सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यमदूत आते हैं, पुलिस आते हैं पकड़ कर लेकर जाते हैं। तो भगवान यमदूत को भेजने से पहले नोटिस भेजते हैं, क्या नोटिस है, बाल सफेद कर देते हैं, बाल सफेद कर देते हैं ताकि लोग जाने, रोज सुबह देखें अब तो सफेद हो गए हैं, अब तो भजन करो। परंतु दुर्भाग्य संसार का, बाल सफेद होते हैं तो उसे काले करा देते हैं। हमें चाहिए कि सफेद बाल को देखकर सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए, परंतु बाल को काले, बुढ़ापे को छिपाने का प्रयास, लेकिन लाखों प्रयास कर लो बुढ़ापे को कोई नहीं छिपा सकता। एक बार हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि इस दुनिया में वैज्ञानिकों ने सब कुछ बना लिया है, सब कुछ, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रोबोट भी बना लिया है, आज चलता फिरता मनुष्य भी बना दिया है, परंतु दो चीज नहीं बना पाए, एक मृत्यु से बचने का उपाय और दूसरा बुढ़ापे से बचने का उपाय। लाखों प्रयास कर लो ये दो चीज से व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। बुढ़ापा जीवन में आने वाला है, कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊं, कोई नहीं चाहता है, क्योंकि बुढ़ापा बहुत दुखदायी होता है। दृष्टि नश्यते, आंख देखना बंद कर देती हैं, वर्धते च बधिरता, कान सुनना बंद कर देते हैं, दशनम विहीनम, दांत एक एक करके सारे दांत गिर जाते हैं, वाक्यम नैव शृणोति बांधव जना, अपने ही पुत्र अपनी बात नहीं सुनते हैं, है तुम बूढ़े हो गए हो, कोने में बैठे रहो, तुमको कुछ पता नहीं चलता है, बूढ़े को बेचारे को कोने में बिठा देते हैं। बूढ़ा बहुत दुखी होता है, बूढ़ा बनना कोई नहीं चाहता है, परंतु एक ना एक दिन आने वाला है। राजा दशरथ सोच रहे हैं, भय उन विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन, बुढ़ापा आ गया और जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए, और अब जीवन जा रहा है, और इस जीवन में यदि भजन नहीं कर पाया तो ये जीवन कुछ काम का नहीं है। जरूर जाओ सो जीवन जान कि नाथ, जिए जग में तुम रो बिनु भय, जान कि नाथ भगवान श्री रामचंद्र की के बिना ये जीवन जल जाने के। तुरंत राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और जाकर कहा कि मैं मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा दशरथ कहते हैं राम को राजा बनाने के लिए योग्य मुहूर्त बताइए, योग्य दिन बताइए। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जैसे पुत्र को राजा बनाने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता है। अरे तुम जिस समय जिस दिन और जिस मुहूर्त में राम को राजा बनाओगे वह मुहूर्त ही पवित्र हो जाएगा, और तुरंत आज और अभी, कल मत करो, तुरंत राम को राजा बनाओ। विश्वाम वशिष्ठ जी के वहां दशरथ जी गए हैं और दूसरे दिन राम को राजा बनाने के लिए तय किए, अयोध्या में आकर सबको बता दिए, उत्सव किया जाए, अयोध्या के को का श्रृंगार किया जाए, कल राम का राज्याभिषेक है। अब सब मैनेजमेंट में सब जगह पर तैयारी करने में दशरथ जी लग गए, क्या पता कैकेयी जी को कहना भूल गए होंगे। उसी समय मंत्रा नाम की एक दासी कैकेयी के पास आई और कैकेयी को गलत गलत बातें बताकर उनके कान भरे गए। जो कैकेयी अपने जीवन में राम और दशरथ से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, इस मंत्राक जैसी दासी का संग करने के कारण वही कैकेयी राम को वनवास देने के लिए तैयार हो गई। भक्तों, संसार में संग की बहुत असर होती है। स्त्री या पुरुषों को चाहिए संगति अच्छे लोगों के साथ कर। यदि कैकेयी ने मंत्रा का संग नहीं किया होता तो राम कभी वन में नहीं गए होते, कभी नहीं। और वनवास में भेजने के बाद जब भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए और जब पता चलाने गए कि ये मंत्रा कौन है, कहां से आई है, कहां की है, कोई नहीं जानता था। और ऐसी स्त्री के साथ कैकेयी संगति करके बैठी थी, 2400 घंटा उसके साथ रहती थी। संग की बहुत महिमा है। गलत लोगों के साथ संगति की तो जीवन अधोगति में चला जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूं, हमारा जीवन दो चीज के ऊपर आधारित है, संगति और संस्कार। यदि ये दो चीज मिल जाए तो व्यक्ति परम पद को प्राप्त हो सकता है, और ये दो में से एक भी नहीं मिला तो व्यक्ति का पतन हो सकता है। संगति होनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ, और बुरे लोगों के साथ एक पल एक सेकंड भी संगति हो गई तो पतन हो जाएगा। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार ढूंढ रहा था। सुबह से लेकर दोपहर तक कोई शिकार नहीं मिला, थक गया, थक कर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सूर्य देव की धूप आ रही थी और हवा के कारण कभी उस शिकारी के मुख के ऊपर धूप आ रही थी, कभी धूप नहीं आ रही थी, कभी धूप आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। आइए स्वागत करते हैं सत्यानंद जी महाराज का, स्वागत करते हैं महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो रविधाम के गादीपति हैं और भगवान के परम भक्त हैं,